7:70 AM, Youngstown, Toronto.
Downtown Brampton Gage Park ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਸਿੰਪਲ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਵੈਂਟ ਹੋਸਟ ਬਾਈ ਕਮੇਡੀਅਨ ਜੈ ਮਾਰਟਿਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਲ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੌਕ ਬੈਂਡ ਸਿੰਪਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਗੇਜ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਆਊਟਡੋਰ ਸਕੇਟਿੰਗ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿਡ ਨਾਈਟ ਫਾਇਰ ਵਰਕ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰੋ। ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ brampton.ca/newyearseve ਤੇ ਜਾਓ।
Sodhi Furniture Store Clearance. Saving.
Sale.
Sodhi Furniture Stock Clearance.
Everything on floor, to go, warehouse, furniture sale.
Ji haan, Sodhi Furniture lagat ki kimat se kam kimat par furniture khareediye. Furniture ki is sale ka fayda uthane ke liye, Sodhi Furniture Showroom, 142 Kennedy Road South in Brampton. Huge sale, jo le gaya, so le gaya.
Jo reh gaya, so reh gaya.
Sodhi Furniture. Naya Saal Naya Furniture, 905-874-7171. Sodhi Furniture Store Clearance.
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com। QTL, because we care.
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ $400 ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ $350।
ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸਿਰਫ $100।
ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਸੇਵ ਕੀਏ ਹੈ $1,775।
ਕਿਆ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਆ, ਮੁਝੇ ਵੀ ਗੁਰ ਸਿਖਾਓ ਨਾ।
ਭਾਈ ਬਾਤ ਸਾਦਾ ਸੀ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਦੋ ਗਾੜੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਨ ਸਭ ਕੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲਾ ਕਰ ਮੈਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੇਵਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਦੂ ਕੀਆ ਹੈ ਆਲ ਸਟੇਟ ਪਿਕਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬਾਸ਼ਾ ਨੇ। ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਾੜੀ ਔਰ ਘਰ ਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੇਂ ਖੂਬ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ। ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ। ਆਲ ਸਟੇਟ ਪਿਕਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬਾਸ਼ਾ, 647-290-3773, 647-290-3773।
अदनान अलवी प्रेसिडेंट लाइफ टाइम ग्रुप। अदनान अलवी को कौन नहीं जानता। आप पिछले 15 सालों से अपनी कम्युनिटी को एजुकेट कर रहे हैं कि किस तरह अपनी इनकम और अपनी वेल्थ को इंक्रीज किया जा सकता है। आपके लिए हमेशा यूनिक और इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट आइडियाज लेकर आते हैं। अगर आप आज की बदलती हुई रियल एस्टेट मार्केट से परेशान हैं और चाहते हैं कि आप अपने पैसों को ज्यादा सिक्योर रखते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट बनाएं, तो आज ही अदनान अलवी से प्राप्ता करें। 416-301-0249।
ओह, दुबई जाना है।
वो क्यों?
बेटी की शादी है, सोने और डायमंड की यूनिक ज्वेलरी की खरीदारी करनी है।
छोड़ो जी, एक दफा चोपड़ा ज्वेलर को विजिट करो, दुबई से बेहतर है। गोल्ड, जड़ाऊ जेवरात, डायमंड, जड़ाऊ डायमंड ज्वेलरी, चूड़ियाँ, कड़े, पेंडेंट, हर जेवर यूनिक है और बेशुमार वैरायटी है। मजे की बात है, डिस्काउंट्स भी बहुत सारे हैं। किस किस का बताऊं? सीइंग इज बिलीविंग।
एड्रेस दें।
1066 एल्बियन रोड, एल्बियन इज लिंगटन की नुक्कड़ पे। व्हाट अ ब्यूटीफुल कलेक्शन, चोपड़ा ज्वेलर्स। 416-744-7534। कैनेडा में दुबई, चोपड़ा ज्वेलर्स।
लैम्फाई, अब पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे ममालिक में पैसे ट्रांसफर का आसान हल। कनाडा से पाकिस्तान पैसे भेजें, वो भी मिनटों में। अपनी पहली ट्रांजैक्शन अप टू $50 पर 10% कैशबैक हासिल करें। प्रोमो कोड यूज करें EZ10। लैम्फाई की एक्सक्लूसिव ऑफर से आज ही फायदा उठाइए। विजिट lamfi.com, LEMFI। आज ही फ्री ऐप अपने एंड्रॉइड या एप्पल फोन में डाउनलोड कीजिए। लैम्फाई, सेफ, सिक्योर एंड फास्ट मनी ट्रांसफर।
MX Travels 5-star हज पैकेजेस। आप हज पे जाना चाहते हैं? कंफ्यूजिंग हज ऐप के हाथों परेशान मत हो। नियत आपकी, बुलावा रब का, इंतजाम और एहतमाम एमएक्स ट्रेवल का एयर टिकट्स, मदीना, मक्का, मिना टेंट्स, अरफात कैंप, हरम के सामने होटल की सहूलत से लेकर डॉक्यूमेंटेशन, वीजा, हर चीज सिर्फ एमएक्स ट्रेवल्स के साथ. लिमिटेड सीट्स, कॉल एमएक्स ट्रेवल.
एलीट हज 2025 पैकेजेस एक्सक्लूसिव स्पेशल डील्स फॉर यूएस, कैनेडियन, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स. लिमिटेड सीट्स.
Book now. Call 416-599-5200. 416-599-5200.
खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो न सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं. और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं. और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है. आज ही मुझे कॉल करें. आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है. 416-570-0157.
चांदनी बैंक्वेट हॉल.
इंटेलिजेंट चॉइस लोकेशंस, साउंड सिस्टम इनोवेशंस. चांदनी बैंक्वेट हॉल.
30 इयर्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस. कॉर्पोरेट इवेंट, एग्जीबिशन, एक्सपो और एनी सेलिब्रेशन.
इंडोर एंड आउटडोर गोल्फ कोर्स फैसिलिटीज. चांदनी बैंक्वेट हॉल. फॉर अपॉइंटमेंट कॉल टुडे एट 905-458-8888 और विजिट chandnivictoria.ca.
इन सब कामों के लिए तो मुझे बैक होम ही जाना पड़ेगा.
कौन से काम?
वही बेटे की शादी सर पर है और ज्वेलरी का खास काम अभी तक नहीं हुआ.
बस इतनी छोटी सी बात. पायल ज्वेलर्स पे हर किस्म की ज्वेलरी है और वो स्पेशलाइज करते हैं इन सब में ही. दुबई, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान और यहाँ की तमाम लेटेस्ट ज्वेलरी.
मुझे उनका एड्रेस बताओ, मैं आज ही ये काम जाके करवाती हूँ.
जी जी बिल्कुल. पायल ज्वेलर्स का एड्रेस है 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव, यूनिट 42, ब्रैम्पटन. पायल ज्वेलर्स के असलम भाई को कॉल करें ना एट 905-790-7879. दैट इज 905-790-7879.
वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम साझा 770 AM डायल पर और मैं हूं जिशान आपके साथ. eawaz.com, जी हाँ, ये वेबसाइट है जहां पर आप हमारे नशियात को लाइव 24/7 देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं. और eawaz.com वो वेबसाइट है जहां पर आप इंग्लिश में और उर्दू में ताजा तरीन डिटेल के साथ खबरें भी पढ़ सकते हैं. तो ये रही हमारी वेबसाइट की बात. और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं कहीं, हमारा सुनने का नंबर है 6478724900. वक्त हुआ है न्यूज का और न्यूज के साथ हमेशा की तरह शहजे मलिक साहबा तैयार है तो उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहें. अस्सलाम वालेकुम शहजे, कैसे हैं
आप? वालेकुम सलाम दिशान, आज तो बड़ी प्यारी टी तुमने शर्ट लगाई हुई है.
अच्छा, सुबह से है ना मुझे एक लतीफा याद आ रहा है.
अच्छा, ये कंजर्वेटिव से सारे आजकल क्योंकि बड़े इतने ज्यादा इम्प्रेस हो गए हैं. हर कोई आजकल ब्लू पहन के आ रहा है. बिल्लू पहन के,
दुनिया का नंबर वन कलर है
बिल्लू. आज हमने भी बिल्लू पहना है.
बिल्कुल. अच्छा, जब पाकिस्तानी कॉमेडियन का नाम लेते हैं तो आपके जहन में किस किस का नाम आता है?
एक तो आता है सबसे पहले टॉप के ऊपर तो उमर शरीफ ही हैं, ठीक है, फिर मुईन अख्तर हैं, फिर उसके बाद जो है वो दिलदार परवेज भट्टी होते थे लाहौर में. और अगर आप राइटिंग की बात करें तो फिर तो अनवर मकसूद से ऊपर कोई नहीं है. ठीक है जी,
सही. एक जो कॉमेडियन हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, वो इतना उन्होंने काम नहीं किया मीडिया पर, लेकिन उनके जो कॉमेडी थी बहुत आउट क्लास थी, तो उस जमाने में उन्होंने मुईन अख्तर साहब और उमर शरीफ साहब को भी पीछे छोड़ा होता. سلیم چھبیلا صاحب.
مجھے نہیں پتا ان کا.
جی تو ان کی ایک آڈیو کیسٹس آیا کرتی تھی کامیڈی شوز کی, تو اس میں ایک لطیفہ تھا وہ مجھے آج صبح سے جو ہے بہت یاد آ رہا تھا.
اچھا
تو ان کا ایک لطیفہ تھا کہ جب آپ کسی کو بولیں گے کہ بھائی یہاں آؤ, تو آپ انگلش میں کیا بولیں گے؟ کم ہیئر. ٹھیک ہے نا. پھر آپ اس کو انگلش میں آپ نے بولا کہ وہاں جاؤ, تو آپ انگلش میں کیا کہیں گے؟ تو وہ کہنے لگے میں وہاں جاؤں گا اور اس کو بولوں گا کم ہیئر.
یعنی گو دیر کی اس کو انگلش نہیں آتی تھی.
آج مجھے صبح سے جو ہے وہ بڑے یاد ہے. چھبیلا صاحب
ٹیلنٹ تو بڑا تھا اس قوم میں, لیکن ہم نے تو اپنا جو ہمارا کلچرل ہیریٹیج ہے اس کو ہم تو کچھ اس کو پرزرو کرنے کا کرتے نہیں ہیں. اب آپ سوچیں کہ لتا جی جو ہیں وہ کہتی تھیں کہ بھائی جو مہدی حسن سے بڑا سنگر کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سارا ہندوستان بھی کیا پاکستان بھی بولتا تھا کہ جی سب کانٹیننٹ میں نور جہاں سے بڑی تو کوئی سنگر آئی نہیں ہے. لیکن اب دیکھ لو ورلڈ لیول پہ بس لتا لتا لتا. ابھی محمد رفیع صاحب جو ہیں ان کا وہ ابھی جب میں نے بتایا تھا کہ جی ان کی ڈیتھ اینیورسری سب نے کی تھی, ساری دنیا میں محمد رفیع کانسرٹس ہو رہے ہیں, تعریفیں اس کی جا رہی ہیں. ہمارا تو کوئی سنگرز کا نام ہے, یہ استاد امانت علی وغیرہ اور استاد بڑے غلام علی وغیرہ, ان کا تو کوئی نام ہی نہیں لیتا. تو ہم تو اپنی ساری چیزوں کو گما دیتے ہیں نا, کسی کی کوئی وہ نہیں کرتے ہیں. آپ سوچیں کہ نازیہ حسن وغیرہ کے گانے جو ہیں کتنے اب چوری کیے جا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی بہت سارے گانے کیے جاتے تھے ہندوستان میں, کوئی اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان کا زور نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. انجمن کی جو فلمیں آتی تھیں, اس کے پنجابی جو فلمیں آتی تھیں, اس کے کتنے گانے یہ لوگ چوری کرتے تھے, ان کے میوزکس کرتے تھے. کوئی گورنمنٹ آف پاکستان سو رہی ہے, کوئی جو ہے ان کو ہوش نہیں ہے کہ بھائی وہ بولیں کہ یہ کاپی رائٹس ہیں بھائی ہمارے.
ایک زندہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں جو میرے ساتھ بیتی ہے. 50-50 جو آتا تھا پروگرام,
کیا زبردست آتا تھا پروگرام.
تو ہمارے جو ان لوس ہیں پپا جی ہیں وہ وی سی آر میں ریکارڈ کر لیتے تھے.
اچھا.
تو اب جب ان کے وہ وی ایچ ایس کیسٹ جو ہے ان کے پاس ابھی تک کینیڈا میں موجود ہے, پھر ہم نے کہا کہ اس کو ڈیجیٹلائز کریں. پھر ہم ایک سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر وغیرہ لا کے اس کو میں نے یعنی کہ اس کو
ڈیجیٹلائز کیا.
ہاں اس کو تو کیا, لیکن اس کی آڈیو پکچر وغیرہ بھی میں نے اس کو ماسٹرنگ کی. پھر وہ میں نے ایز اٹ از جو ہے 50-50 ڈھائی گھنٹے کا یوٹیوب پہ لگایا اپنے پرسنل چینل پہ.
اچھا اچھا.
میں کافی پرانی آپ کو بات بتاؤں. پھر ایک اچھا اس زمانے میں تو کوئی ریکارڈنگ کمپنی نہیں تھی, ایک جو کمپنی تھی وہ شالیمار ریکارڈنگ. اب پھر مجھے کافی عرصے وہ رہی, اس کے ویوز وغیرہ بھی آئے, پھر مجھے وہ بلاک کر دی گئی, اسٹرائک آیا. کوئی وی ٹاکس کر کے کوئی میجر نام بھول گیا, پرائیویٹ لمیٹڈ اسلام آباد میں. ہم نے کہا بھائی یہ آپ نے میری کیوں بلاک کی, کہتے ہیں کہ اس کے رائٹس ہمارے پاس ہیں, آپ کو پروف وغیرہ دکھاؤ, یہ تو شالیمار ریکارڈنگز کی ہے, تو پی ڈی وی کی وہ اپنی ملکیت ہے, بنے ان کے رائٹس ہمارے پاس. اب پاکستان میں اس طرح کی پرائیویٹ جو ہے ریکارڈنگ کمپنی کھل گئی ہے, انہوں نے ریکارڈ اپنے نام کر لیے ہیں, آئے کہ وہ سچ ہے یا نہیں ہے. اب میں یہاں پہ بیٹھ کے کس طرح اس کو انویسٹیگیٹ کروں؟ ٹھیک ہے, تو چلے آپ نے آپ کے پاس اس کے رائٹس ہیں, لیکن پھر آپ اپنے چینل کے اپنے تھرو اس کو ریلیز تو کریں.
بالکل.
ہمارا جو ایسٹس ہے 50-50 آج بھی دیکھا جاتا ہے, اس کے جو خاکے ایسے کام ہیں وہ آج بھی دیکھے جاتے ہیں, بہت مقبول ہیں. آپ اس کو ریلیز کریں یوٹیوب پہ اور ڈسکلیمر چلائیں کہ بھائی یہ فلاں نے ریکارڈ کیا تھا, فلاں کی ملکیت ہے, اب یہ ہماری ہو گئی ہے. تو اس طرح ہم کھوتے رہیں گے. اگر آپ دیکھیں پارٹیشن سے پہلے انڈیا کے گانے آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے اچھی کوالٹی میں, لیکن ہمارے گانے آپ کو نہیں ملتے,
کیونکہ یہ کام ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں نا. یہ تو یہ صرف باتیں کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے صرف باتیں کرنی ہیں, انہوں نے کام تھوڑی کرنا ہے. پچھلے 50 سال میں ہی آپ دیکھ لیں کیوں پاکستان سے بہت پیچھے تھا انڈیا, بہت پیچھے تھا. پچھلے صرف 50 ایئرز میں وہ ہم سے آگے کیوں نکل گئے ہیں؟ منہ پہ انگلی رکھ کے انہوں نے کوئی ورساچی کے کپڑے نہیں انہوں نے پہنے, کوئی انہوں نے ڈھینگے نہیں ماری ہمارے پنجابیوں کی طرح, کوئی انہوں نے پھڑے نہیں ماری, کوئی کچھ, چپ کر کے بچوں کو پڑھایا. یو سی دا ریزلٹ ٹوڈے. ٹاپ کمپنیز جو دنیا کی ہیں سب کے سی ایوز انڈین ہیں, ये अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, इसमें जो टॉप पोजीशंस है वो इंडियंस के पास आप देखना, और इसी तरह जो बड़े बड़े और भी दुनिया में अदारे हैं उस सब जगह के ऊपर। आप सोचें कि कमला हैरिस हार गई, अगर आप सोचें कि वो अगर जीत जाती तो इंडियन ओरिजिन की अमेरिका की भी प्रेसिडेंट इंडियन होती, आप सोचें जरा। तो इसलिए हमें भी पाकिस्तानियों को भी ना बिल्कुल मुंह पे उंगली इस वक्त रख के, बहुत पीछे हम रह गए हैं, फिर भी अभी भी कुछ सारा कुछ गुम नहीं हो गया है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जो है अपने बच्चों को अच्छी यूनिवर्सिटियों में भेजना चाहते हैं। 6 करोड़ रुपया अगर आपके पास है ना, तो मेरा तो आपको मशवरा यही होगा कि ना गाड़ी लें ना घर लें, बच्चे को स्टैनफोर्ड में पढ़ने भेज दें या हार्वर्ड में पढ़ने भेज दें।
अच्छा,
आपका एक बच्चा जो हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड का पढ़ के आएगा ना, और एक किसी कंपनी का वो सीईओ लगेगा ना, 10 पाकिस्तानियों को अपने साथ पुल करेगा। ये कैसे आपको लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट और याहू और ये सारे जो है सारे का सारा, यानी दुनिया में सिर्फ जो है वो सॉफ्टवेयर हिंदुस्तान में बनता है, दुनिया के और 195 कंट्रीज में नहीं बनता, बट जस्ट बिकॉज देयर हेड्स आर इंडियंस, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन इंडिया के ऊपर होता है। मतलब मैं उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, मगर मैं ये बता रही हूँ कि वो लोग अपनी सारी की सारी ज्यादातर जो वर्क फोर्स होती है या अपना काम होता है, फिर वो बैक ऑफिस जो है इंडिया से अपना करवाते हैं। तो भाई आपका भी कोई हेड किसी जगह पे लगा होगा तो आप कराएंगे ना।
2-3 साल पहले की मैं वीडियो देख रहा था, किसी वीग्लॉगर ने 9-10 या इंटर के जो कंप्यूटर की जो क्लासेस होती है उसकी बुक का जो ना थोड़ा सा मुताला किया उसने, और मैं हैरान हो गया, वो भी परेशान था कि ये आजकल क्या पढ़ा रहे हैं।
हाँ।
क्या पढ़ा रहे हैं, माउस, ये माउस है, फोल्डर ऐसे बनाते हैं, ये कीबोर्ड है। अब देखिए जो बच्चा जो पढ़ रहा है उसको ऑलरेडी पता है वो फोन में है, आजकल वो स्मार्टफोन में है,
बिल्कुल उसको अपडेट ही नहीं करते ना, सिलेबस अपडेट ही नहीं करते,
आप उसको आउटडेटेड पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो वो हाँ। कैसे इसको,
आपको पता है कि इंडिया के अंदर कितना बैकलैश आया था, ये जो इनके आईआईटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो यूनिवर्सिटीज है ना, आईआईटी यूनिवर्सिटीज है इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर वो सुसाइड कर लेते हैं वहां पे। तो वहां पे उन्होंने गवर्नमेंट को बोला, कुछ एक्सपर्ट्स ने, कि तुम लोगों ने इतना मुश्किल पढ़ाई को बना दिया है कि जब बच्चा वो स्टैंडर्ड को नहीं मीट कर सकता है तो वो सुसाइड कर लेता है। लेकिन वही आईआईटी जो है वही इंडिया की तरक्की का राज है, क्योंकि उन्होंने जोर अब एक्सलेंस पे रखा हुआ है। एक्सलेंस जो बच्चा ले लेता है वो फिर जो है ना वो दुनिया की टॉप पोजीशंस पे जाते हैं। अभी आप देखना ये सारे ये विवेक रामास्वामी की हम बहुत बात करते हैं, आप देखो हार्वर्ड का पढ़ा हुआ है वो, ठीक है, डॉक्टर भट्टाचार्य को आप देखें स्टैनफोर्ड से पढ़े, मतलब है तमाम क्रीम जो है उनकी, तमाम क्रीम जो है उसको। हाँ, तो इसलिए बस हमारा ये होता है, 6 करोड़ रुपया ना जी, अच्छी गड्डी ले लो तो अच्छा कार ले लो। हाँ जी, ये अच्छी गड्डी और अच्छा कार इनदर 30-40 ईयर्स अगर आपने छोड़ दिए ना, अपने बच्चों को पढ़ा लिया, फिर आप देखना आपका मुल्क कैसे ऊपर की तरफ जाएगा, कैसे ऊपर की तरफ जाएगा।
चलें, फ्राइडे का दिन है तो अच्छी अच्छी बातों से,
अच्छी बातें भी कुछ करते हैं। अच्छा जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल, और वो कहते हैं जी बड़े जबरदस्त यहाँ पे, एक तो खाने भी मिलते हैं और फिर इंडोर आउटडोर जो है यहाँ पे गोल्फ कोर्सेज भी हैं, तो अगर आपको यहाँ पे 30 ईयर से जी वो कहते हैं हम एक्सलेंस आपको जो है प्रोवाइड करें, वही जो हम एक्सलेंस की बात अभी कर रहे थे, तो वो कहते हैं जी अगर आपको अपने इवेंट्स यहाँ पे कराने हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 905-458-8888। राजा बादशाह जी, अगर आपने ढेर सारे पैसे बचाने हैं, आपको अफोर्डेबल होम और ऑटो इंश्योरेंस चाहिए, तो आप राजा बादशाह जी को कॉल करो, इनका नंबर है 6472903773। फ्लाइट ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं जी एमएक्स ट्रैवल वालों के पास, वो कहते हैं अगर आपको हज पैकेजेस चाहिए और आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो आप इनको कॉल कीजिए 416-599-5200। चोपड़ा ज्वेलर्स, जबरदस्त किस्म की एलिगेंट और स्टाइलिश ज्वेलरी है इनके पास, और अगर आपका कोई भी फैमिली का फंक्शन या ओकेजन आ रहा है तो आप इनको चोपड़ा ज्वेलर्स को फोन करें, इनका नंबर है 416-744-7534। ठीक है जी। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो आज की जो हम सबसे धमाके खेज आपको फिल्म जो है सुनाने लगे हैं या दिखाने लगे हैं, है जी, नहीं फिल्म नहीं दिखा रहे, खबरें ही बता रहे हैं, लेकिन ये एक फिल्म की तरह ये न्यूज चलेगी, तो इसलिए मैंने कहा ये फिल्म हम आपको दिखाने लगे हैं। ये फिल्म जो है इंतहाई खतरनाक होती जा रही है, और इंडिया और कनेडा के बीच में जो ताल्लुकात है ना वो लग रहा है कि और खराब होंगे। ठीक है जी, बहुत अरसे से ये जो अब अमेरिका इनको कह रहा था, और अभी रिसेंटली भी ट्रंप साहब ने कहा कि बहुत ज्यादा इलीगल तुम्हारी जो है ये लोग जो हैं इधर कनाडा से अमेरिका में आ रहे हैं, फिर कनाडा ने भी इंडिया को कहा, तो इंडिया में एक इसके ऊपर प्रोब बिठाई। खैर कनाडा बहुत अरसे से इंडिया को कह रहा था, तो अब इसके ऊपर जो थी इन्होंने एक प्रोब बिछाई। ये आज जो है बहुत ही खतरनाक स्टोरी आई है, इसमें इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई है और उन्होंने कहा जी कि कुछ कॉलेजेस जो हैं आपके यहां पे कनाडा में और दो एंटिटीज जो हैं मुंबई के अंदर वो इलीगली फेरी कर रही हैं स्टूडेंट्स को फ्रॉम कनाडा टू यूएस और इस बॉर्डर पे ये लोग कर रहे हैं। आपको पता है कि ये सारे का सारा मसला उस वक्त आया था जब एक जो फैमिली थी वो जब ये कर रही थी, इसकी जगदीश बलदेव भाई पाटिल 39 इयर्स के थे और अगर आप हमारा टीवी देख रहे हैं तो आपको नजर आएगा हमारे टीवी पे, ये और इसकी बीवी और दो बच्चे जो थे वो मैनिटोबा से यूएसए के अंदर एंटर करना चाह रहे थे जनवरी 19, 2022 में और फिर वहां पे इतनी शदीद सर्दी थी कि सर्दी से ही वो अकड़ के वहां पे मर गए थे। तो उसके बाद से ये इन्वेस्टिगेशन कैनेडा ने भी और फिर इंडिया ने भी अब जो है वो डाली थी, तो उन्होंने कहा जी कि ये सारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है और ये मनी लॉन्ड्रिंग को जो ये ट्रेस कर रहे थे, एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया में इसको इन्वेस्टिगेट किया तो इनके सामने ये सारी चीजें नजर आई। अभी तक वैसे तो कनाडा में आरसीएमपी ने या के जो इंडियन हाई कमीशन है ओटावा में उसने अभी तक या कैनेडियन कॉलेज के कुछ ऑफिशियल्स ने इसके ऊपर बात नहीं की है, ना ही यूएस एम्बेसी ने की है, लेकिन ये जो है इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनकी सारी ये रिपोर्ट आई है। इन्होंने कहा जी कि पिछले महीने यानी कि नवंबर के महीने में एक मिनेसोटा ज्यूरी ने फाइंड आउट किया था कि दो लोग जो हैं गिल्टी हैं उसमें, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, उसमें एक का नाम था स्टीवन शैड ऑफ फ्लोरिडा और दूसरा था हर्ष कुमार पाटिल, ये इंडियन नेशनल था जिसको कि अरेस्ट किया गया था फिर शिकागो के अंदर। प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि ये जो हर्ष कुमार पाटिल है ये कोऑर्डिनेट करता था ये सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन। शार्ट जो था वो सिर्फ शैंड जो था वो सिर्फ ड्राइवर था, वो ये बहुत सारे जैसे कि अभी रिसेंटली 11 इंडियन माइग्रेंट्स को उसने मिनेसोटा की साइड पे जो है वो लेकर गया था बॉर्डर के और लेकर जाने में उसमें जो 11 में से सिर्फ 7 लोग जो थे वो बचे थे। कनेडियन अथॉरिटीज ने फाइंड आउट किया था कि ये जो बेचारी पाटिल फैमिली जो के मर गई थी तो उसको जो है वो चाहते थे कि इसको पकड़ा जाए और पता चले कि जी ये कौन कौन एक्यूज्ड हैं। बहरहाल इनको अभी तक सेंटेंस तो नहीं हुई है लेकिन अभी तक ये चल रही है। इंडियंस ने बहरहाल ये बड़ी जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन की है और उन्होंने कहा जी कि हमने जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी जब हमें ये रिपोर्ट आई थी कि एक भावेश अशोक भाई पाटिल जो हैं वो ये सारे अलेज्ड जो ट्रेवल्स हैं स्टूडेंट्स के भी फैमिलीज के भी वो अरेंज करते हैं और वो पर फैमिली मेंबर 93,000 से 102,000 जो हैं वो लेते हैं टू क्रॉस फ्रॉम कनाडा टू यूएस। ये जो इंसिडेंट था इसको अब दिनगुचा केस कहा गया था इंडिया के अंदर क्योंकि ये जो फैमिली बेचारी मरी थी ये दिनगुचा विलेज की थी गुजरात से और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो था फिर उसने ये सारा किस्सा आने के बाद और ये पता चलने के बाद कि बहुत सारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, 8 जो जगह थी उनको उनपे छापे मारे थे इंडिया में, मुंबई, नागपुर, गांधीनगर, वडोदरा और जो है इन जगहों पे। और फिर उसमें भावेश जो था उसके बारे में आया था कि ना सिर्फ ये लोगों को बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं बच्चे जो हैं उनको भी ऑर्गेनाइज करता है फॉर गेटिंग एडमिशन्स इन कैनेडियन कॉलेजेस और उनके लिए स्टूडेंट वीजा भी ऑर्गेनाइज करता है। जाहिर है कि इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने जो कैनेडियन स्कूल्स हैं उनके नाम तो रिवील नहीं किए हैं लेकिन उन्होंने कहा जी कि तकरीबन 25,000 स्टूडेंट्स को इंडिया से एक एंटिटी जो मुंबई में बेस्ड है उसको रेफर किया गया था और 10,000 जो है दूसरी एंटिटी यानी कि जाहिर है कि जो इलीगल काम में इन्वॉल्व है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग में वो एंटिटी उसको कह रहे हैं ये लोग। तो ये कहते हैं जी कि इनका नेटवर्क जो है 1,700 एजेंट्स का है इन गुजरात एंड 3,500 जो है ऑल टुगेदर इंडिया के अंदर है। 112 कैनेडियन कॉलेजेस जो है उसको इन्होंने टैप किया हुआ है और उनके साथ एक एंटिटी डील करती है और अनदर 150 कॉलेजेस जो कनाडा में है उसके साथ दूसरी एंटिटी जो है वो करती है। तो दिस इज अ ह्यूज ह्यूज ब्रेकिंग न्यूज और कनाडा जो है उसमें अमेरिका ठीक कहता है कि भाई तुम्हारे मुल्क से बहुत सारे इलीगल लोग जो हैं वो क्रॉस कर करके अमेरिका में आ रहे हैं, तो अब अगर तो वेदर अच्छा है तो तब तो वो चले जाते हैं और वेदर अगर सर्दियों का है तो बेचारे बहुत सारे अकड़ के उधर ही जंगलों में रास्तों में मर जाते हैं। तो ये दिस एक्चुअली इज अ सीरियस प्रॉब्लम जिसकी तरफ ट्रंप साहब ने जो है वो इशारा किया है। अच्छा जनाब, ये अब जरा सोर्स ऑफ कंसर्न है, हालांकि पहली दूसरी खबर तो मुझे आपकी डोमिनिक लीब्लॉ और मेलानी जोली की देनी चाहिए थी, बट दिस रियली इज बिकमिंग अ सोर्स ऑफ कंसर्न, क्योंकि हूफिंग कफ जो है बेतहाशा फैल रहा है और लोग बहुत ज्यादा यहां पे बीमार हो रहे हैं। अक्सर आप अगर फैमिली से पूछेंगे तो वो आपको कहेंगे कि जी बहुत ही बैड एक वायरस जो है यहां पे फिर रहा है, जिसकी वजह से हमें नजला है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, और जो है तो ये हूफिंग कफ जो है ये भी बहुत ज्यादा यहां पे फैल रहा है, और ये जो है वो इसको कैनेडा के अंदर पर्ट्यूसिस कहते हैं या 100-day कफ कहते हैं, और ये काफी सारी अब प्रोविंसेस और टेरिटोरीज में फैल रहा है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। हेल्थ कैनेडा और पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ कैनेडा जो है वो कहते हैं कि ये इंतहाई कंटेजियस लंग और एयर वे इन्फेक्शन है जो कॉज कर रही है ये बॉर्डरटेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया, और ये स्प्रेड होता है जब आप खांसते हैं तो ड्रॉपलेट्स जो एयर में जाते हैं इन्फेक्टेड आदमी के, तो वो दूसरे आदमी के मुंह में जाते हैं, तो लोग जो हैं इस तरह से बीमार होते हैं। ये अब बेतहाशा केसेस जो हैं रिपोर्ट किए जा रहे हैं 5 प्रोविंसेस में, स्पेशली ऑन्टेरियो, क्यूबेक, न्यू ब्रंसविक, पीईआई, न्यूफाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, और हालत इतनी ज्यादा खबर खराब हो गई है, वो कह रहे हैं कि हालत अब सरपैस कर गई है प्री पेंडेमिक पीक को भी। ऑफिशियल्स ने रिपोर्ट किए हैं अभी तक 19,000 केसेस, इसके अलावा आउटब्रेक्स जो हैं और भी जगहों पे अल्बर्टा, बीसी, नुनावेट में भी देखे जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हेल्थ कैनेडा वेबसाइट, इस वक्त जो है, हर वक्त वैसे जो मुल्क में हर साल 1,000 से 3,000 केसेस होते हैं, लेकिन अभी तक जो है 19,000 केसेस अभी ईयर एंड तक आ चुके हैं। अभी ज्यादातर तो ये जाहिर है कि इधर सर्दियों के मौसम में ये चीज जो है ज्यादा खराब हुई है। फाइनेंस मिनिस्टर डोमिनिक लीब्लॉ और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं मेलानी जोली साहिबा, वो अब फ्लोरिडा में गए हुए हैं ताकि वो ट्रंप के जो ऑफिशियल्स हैं इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके साथ मुलाकातें कर सकें। एक स्टेटमेंट जो डोमिनिक लीब्लॉ के ऑफिस से आई है, उन्होंने कहा जी कि ये अभी पाम बीच में गए हैं ताकि ये कनाडा की जो एफर्ट्स हैं टू कॉम्बैट फेंटनॉल एंड ट्रैफिकिंग एंड इलीगल माइग्रेशन, और कनाडा ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं फॉर अंडर कनाडा बॉर्डर प्लान, वो उन सब की डिटेल्स जो है देने, वही जो मैंने अभी आपको सबसे पहली स्टोरी सुनाई है, वो पहली स्टोरी जो है उसी का ये जो है वो कॉन्टिन्यूएशन है, कि जिसका कि बहुत ज्यादा इनको कंसर्न है इंडियंस को। जो इनके स्पोक्स पर्सन है जॉन सेबेस्टियन क्यूमियो, उन्होंने आज कहा है कि जी ये एम्फोसाइज करेंगे कि अगर आपने हमारे ऊपर 25% टैरिफ्स लगाए कैनेडियन गुड्स के ऊपर, तो कनाडा और यूएस दोनों सफर करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की चीजों के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। और उन्होंने कहा जी कि ये बातचीत जो है अब करेंगे इनके साथ मिलके, और इनको बताएंगे कि हम बिल्कुल आपके साथ काम करने को तैयार हैं, यानी कि न्यू ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करने को तैयार हैं। और ये जो है आपको पता ही है कि अब ये सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स माना जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टॉक्स में तो ट्रूडो साहब की मुलाकात ट्रंप साहब से जो हुई थी मारा-लागो में लास्ट मंथ, तो उसमें उन्होंने ट्रूडो साहब ने बिल्कुल उनको कहा था कि वी विल टेक मेजर्स। तो ये जो सारे मिनिस्टर्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ बात करेंगे, खासतौर पे जोली और डोमिनिक लीब्लॉ जो हैं इनके जो ट्रंप साहब के जो बॉर्डर जार हैं टॉम होमन, उनके साथ बात करेंगे और उनको बिल्कुल यकीन दिलाएंगे कि जी हम बिल्कुल टाइट कर रहे हैं अब चीजें बॉर्डर के ऊपर, तो अब देखेंगे चीजें कैसे चलती हैं। कंजर्वेटिव एमपी जो हैं जोनाथन विलियमसन, उन्होंने कहा है जी कि अब जैसे ही न्यू ईयर के बाद हम वापस आएंगे तो मैं एक नो कॉन्फिडेंस वोट जो है वो रोल आउट करूंगा अगेंस्ट द ट्रूडो गवर्नमेंट। आपको पता ही है कि अभी तक जगमीत सिंह साहब जो थे ट्रूडो साहब के साथ जो है वो खड़े हुए थे और वो कह रहे थे कि मैं बिल्कुल गवर्नमेंट को गिरने नहीं दूंगा, और बड़े उन्होंने बयान भी दिए थे कि ये जो पीए पॉली एफ के जो हैं जो ट्रिक्स हैं उनके अंदर मैं नहीं आऊंगा। तो अब उन्होंने कहा है जगमीत सिंह साहब ने कि अब अगर ये लोग लेकर आएंगे नो कॉन्फिडेंस मूव तो मैं बिल्कुल टोरीज के साथ खड़ा रहूंगा और मैं ट्रूडो गवर्नमेंट को लाऊंगा। और ये उन्होंने बात उस वक्त कहनी शुरू की है जब क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने एज फाइनेंस मिनिस्टर एंड डेप्यूटी पीएम जो है रिजाइन किया है। बहरहाल जो एमपी जोनाथन है उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर लिखा है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसको मैं भेजूंगा ये मोशन ऑन January 7th, और कमेटी जो है उसके ऊपर डिबेट करेगी और फिर ये मोशन को भेजेगी हाउस ऑफ कॉमन्स में डील करने के लिए, और फिर इसको वापस भेजा जाएगा ऑन January 27th टू वोट, और ये वोट जो है January 30th को आ सकता है, यानी कि एज अर्ली एज January 30th जो है नो कॉन्फिडेंस मूव आ सकती है और ट्रूडो साहब की गवर्नमेंट जो है वो गिराई जा सकती है। बहुत सारे लोगों का तो ख्याल है कि फरवरी मार्च में तो नहीं लग रहा कि इलेक्शंस आए, हो सकता है कि मार्च के बाद स्प्रिंग में यानी कि अप्रैल में इलेक्शंस जो हैं वो आ सकते हैं, तो हमारा भी ये ख्याल है। मुझे तो लगता है खैर जल्दी आ जाएंगे, लोगों का ख्याल है स्प्रिंग में आएंगे, तो अब देखते हैं जी क्या होता है। ठीक है जी, हालात जो है जी सारी दुनिया में जो गवर्नमेंट्स हैं डावाडोल हैं जी। आज मेजॉरिटी जो थी साउथ कोरियन पार्लियामेंट ने उन्होंने वोट किया टू इम्पीच देयर एक्टिंग प्रेसिडेंट हान डक सू एज ऑन गोइंग ये जो टर्मोइल है ये पोलिटिकल टर्मोइल है ये इट इज रियली बिकमिंग इंटेंस। आपको पता ही है कि साउथ कोरिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है एशिया की, लेकिन करेंसी जो है इसकी बहुत नीचे 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 जाती जा रही है सिंस 2007-2009 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। और ये जो यहां पे मेन ऑपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी डीपी जो है वो पार्लियामेंट को करती है कंट्रोल, उसके 170 सीट्स हैं। तो 192 लॉ मेकर्स ऑफ 300 मेंबर पार्लियामेंट जो है उन्होंने वोट किया इसको इम्पीच करने के लिए, और उन्होंने कहा है जी कि बिल्कुल हम जो है इसको अब नहीं आगे चलने देंगे। अलबत्ता जाहिर है कि जो रूलिंग पार्टी थी उसके पॉलिटिशियंस ने बॉयकॉट किया था इस वोट को। प्राइम मिनिस्टर हान जो है वो ही वॉज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट सिंस प्रेजिडेंट यून सुक योल जो है उनको इम्पीच किया गया था, क्योंकि उन्होंने जो है छोटा सा एक मार्शल लॉ लगाया था। तो उन्होंने कहा जी कि इसने अपने प्रेजिडेंशियल पावर्स जो है उसको एक्सेसिज उसके शो किए हैं, तो उसको सस्पेंड किया गया था। फाइनेंस मिनिस्टर जो है इनके चोय सैंग मोक वो लग रहे हैं कि शायद वो अब एक्टिंग प्रेजिडेंट बन सकते हैं इंटरिम पीरियड के अंदर, और उसके बाद जो है फिर ये इलेक्शंस लाएंगे और वहां पे करेंगे। इसके साथ साथ ही जो जर्मनी के अंदर भी हालात बहुत खराब हैं, आपको पता ही है जर्मनी और फ्रांस जो यूरोप की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं वहां पे भी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है। जर्मन प्रेसिडेंट जो है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमायर उन्होंने आज ऑर्डर दे दिया था कि जी पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जाए, और उन्होंने आज अनाउंस किया है कि न्यू इलेक्शंस जो हैं फरवरी 23 को आएंगे, इसलिए कि चांसलर ओलाफ शोल्स जो हैं उनकी कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो कलेप्स कर गई थी एक नो कॉन्फिडेंस मूव में दिसंबर 16 को जो हमने आपको बताया था, और ये इसकी जो थी थ्री पार्टी कोलिशन थी जो कि अब आगे नहीं चल सकी थी। इससे पहले ही अलबत्ता जो इनकी जो नवंबर 6 को ही लग रहा हो रहा था कि जी कोएलिशन जो है वो कलैप्स कर जाएगी, और इसीलिए फिर नो कॉन्फिडेंस मूव भी आया था क्योंकि इन्होंने फायर किया था अपने फाइनेंस मिनिस्टर को, क्योंकि उनके बारे में शोल्स साहब का कहना था कि ये बिल्कुल जर्मन इकोनॉमी जो है उसको रिवाइव नहीं कर सक रहे हैं, जैसे बिल्कुल कैनेडा में हुआ है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर जो है क्रिस्टिया फ्रीलैंड गई है और ये क्राइसिस बन गया है। स्टेन में उन्होंने कहा है जी कि हम अब कंसल्टेशन करेंगे पार्टी मेंबर्स के साथ, दूसरे पार्टी लीडर्स के साथ भी, और हम अग्री करेंगे कि ये जो जर्मन पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये अब किस तरह की गवर्नमेंट जो है ये चाहती हैं। ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक ऐसी गवर्नमेंट आए जिसको के मेजॉरिटी जिसकी हो पार्लियामेंट में, और जो ये मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आ सके। आपको पता ही है कि जर्मनी में इस वक्त हालात काफी डामाडोल हैं। एक तो गैस की सप्लाई उनको रशिया से बंद हो गई है जो चीप गैस आती थी, उसके बाद ऑटो मेकर्स जो है वो अब स्ट्राइक करके बैठे हुए हैं, फिर ये गवर्नमेंट जो है बार बार कलैप्स कर रही है। तो इट्स जर्मनी इज इन अ बैड 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 शेप जो है इस वक्त, और इसके साथ साथ जो है जाहिर है फ्रांस भी। 69 पीपल इंक्लूडिंग 25 मालियंस डाइड एक बोट में जो ये हेड कर रही थी फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका टू स्पेन के कनेरी आइलैंड्स हैं, और ये कैप्साइज कर गई थी ऑफ मोरक्को। ये मेकशिफ्ट बोट जो थी ये 80 लोगों को कैरी कर रही थी, उसमें से सिर्फ 11 लोग बचे हैं। ये क्राइसिस जो है ये बहुत ज्यादा क्लोजली अब स्पेन जो है मॉनिटर कर रहा है, और उसके लोग जो है ये इनको उन्होंने जो बचाया भी है तो वो देख रहे हैं इनको। 10,000 माइग्रेंट्स जो हैं वो इस साल अलोन मरे हैं जो कि अफ्रीका से आ रहे थे स्पेन की तरफ, स्पेनिश माइग्रेशन राइट्स ग्रुप ने ये कहा है, और इसका मतलब है कि 30 माइग्रेंट्स पर डे इस साल में जो है मरे हैं ट्राइंग टू रीच स्पेन। ओवरऑल तो डेथ जो है राइज कर गई है 58% कंपेयर टू लास्ट ईयर। थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट्स जो है वो वेस्ट अफ्रीका को छोड़ के इस साल 2024 में कनेरी आइलैंड्स की तरफ से आए थे, क्योंकि वो इसको स्टेपिंग स्टोन समझते हैं स्पेन को, और उसमें एंटर होने के बाद फिर वो यूरोप के अंदर जाते हैं। तो स्पेनिश जो अब अथॉरिटीज हैं वो अभी अब इनको देख रही हैं, और जरा थोड़ा सा कहती हैं कि हम कुछ रूल्स टाइटन करेंगे, क्योंकि वो सीख रहे हैं जर्मनी से। जर्मनी जो थी वो बहुत ओपन हार्ट से और बड़े दिल से जो है माइग्रेंट्स को वो वेलकम कर रही थी, लेकिन माइग्रेंट्स ने फिर काफी उनके प्रॉब्लम्स किए। इनफैक्ट जो लास्ट जो चांसलर थी वो गई बेचारी इसलिए थी क्योंकि जो उनकी पॉलिसी थी ये माइग्रेंट्स की उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। तो ये जनाब अब स्पेन जो है, स्पेन में भी ये काम शुरू हो गया। कल हमने आपको बताया था कि आज़रबाईजान का एक तैयारा जो है वो गिर के तबाह हो गया है। तो आज़रबाईजान ने आज जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन बिठाई है उसमें उन्होंने कहा है जी कि ये जो डेडली एयर क्रैश जो कजाकिस्तान में हुआ है, इस प्लेन को रशियन एयर डिफेंस सिस्टम ने मार के गिराया है। आज़रबाईजान एयरलाइन फ्लाइट 8432 ये क्रैश कर गई थी अक्ताव सिटी के पास, एंड्रू टू ग्रोमजी, चचनिया का जो कैपिटल है सदर्न रशिया, और इसके अंदर जो है 38 लोगों की डेथ हुई थी और 29 इंजर्ड हैं। तो ये जो फाइंडिंग्स इन्होंने की है, उन्होंने कहा जी कि ये उस वक्त कॉज हुई है जबकि फिजिकल और टेक्निकल जो है एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस के ऊपर हुई है। आज़रबाईजान ने अभी तक इसकी जो फाइंडिंग्स हैं पब्लिकली अनाउंस नहीं की हैं, लेकिन एक सोर्स जिसने मीडिया से बात किया उसने कहा जी कि एयरक्राफ्ट को शायद जो रशियन पैंसर एस बैटरी जो है उसकी कम्युनिकेशंस ने उसको पैरालाइज कर दिया था, और फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो था वो जो है था काम कर रहा था जिस वक्त ये ग्रोमजनी के तरफ जा रहा था। आज यूएस ने भी कहा कि बिल्कुल हमें लगता है कि रशिया का इसके अंदर हाथ है। अलबत्त रशियन एविएशन चीफ जो है उनका कहना है कि यूक्रेनियन ड्रोन अटैक्स जो थे उस वक्त ग्रोमजनी के एरिया के अंदर अंडर हुए थे, और ये एयरलाइनर तो ग्रोमजनी की तरफ जा रहा था, तो वो जो था उसको फिर ये इतने शायद उन्होंने देखे होंगे ड्रोन के, उसको डायवर्ट कैप्टन को करना पड़ा। अब समझ नहीं आ रही है कि इसको ऑफर किया गया था कि दूसरा एक एयरपोर्ट के तुम उधर चले जाओ, लेकिन इसने डिसाइड किया कि ये फ्लाई करके अटाउ की तरफ जाएगा अक्रॉस कैस्पियन सी। इसने ऐसा फैसला क्यों किया उसकी अभी तक समझ नहीं आ रही है। अलबत्त ये बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टिगेशन जो है ज्वाइंटली चलाई जाए और असल रीजन जो है इसका फाइंड आउट किया जाए। उन्होंने कहा अभी टू अर्ली है ऐसा कहना, और रशिया ने बिल्कुल इसको मार के नहीं गिराया है, हमारी इन्वेस्टिगेशन जो होगी वही शो करेगी कि क्या है। अलबत्त उन्होंने ये यूक्रेन की तरफ इशारा किया और आज़रबाईजान और अमरीका ने रशिया की तरफ इशारा किया, तो अब पता चलेगा जी क्या हो रहा है। अच्छा जनाब, ये जो इसराइल की जो डेडली वॉर मशीन है ये तो किसी सूरत रुकने का नाम नहीं ले रही है, ना तो इनको वो जो ख्वाजा आसिफ मैंने कल भी बताया था कहते हैं ना कोई शर्म होती है कोई हया होती है, इनको ना कोई शर्म है ना कोई हयान है, ना इनको मरना याद है, ना ये चाहते हैं कि जी हमें कोई पूछे हमें कोई क्वेश्चन करे, और ये कॉन्स्टेंटली इसराइल जो है एवरी सिंगल डे इवन वेन सीज फायर की टॉक्स जो अंडर हुए हैं दोहा के अंदर, तो ये रोज पैलेस्टीनियंस को मार रहे हैं, और बिल्कुल ये अब सही लग रहा है कि शायद ये जीनोसाइड करना चाहते हैं। कमाल अदवान जो हॉस्पिटल है जो कि एक वाहिद ऑपरेटिंग हॉस्पिटल नॉर्दर्न गाजा के अंदर रह गया था, उसके ऊपर भी आज रेड्स किए हैं इजरायली मिलिट्री ने, और पूरे के पूरे हॉस्पिटल को अलेजली उन्होंने जला दिया है, बिल्कुल इसको आग लगा दी है। इसके अंदर 50 लोग जो हैं उनकी डेथ हुई है इंक्लूडिंग 5 मेडिकल स्टाफ, और उसके बाद इन्होंने जो उसके पास की बिल्डिंग के ऊपर भी अटैक्स किए हैं हॉस्पिटल की, उसमें भी काफी लोगों की डेथ हुई है। इसके अलावा 15 लोगों को इन्होंने मारा है गाजा सिटीज शेख रिद्वान, और इतने ज्यादा लोग जो हैं यहां से भाग भाग के टेंट्स में रह रहे थे कि बहुत सारे बच्चों की अब वहां से खबरें आ रही हैं कि दे आर, क्योंकि वहां पर अब सर्दी शुरू हो गई है, तो दे आर ऑल्सो बच्चे यानी बेबीज दे आर फ्रीजिंग टू डेथ, क्योंकि ना तो हॉस्पिटल में उनको रखा जा सकता है ना कोई वहां पर अब घर रह गए हैं, टेंट्स में रह रहे हैं और उसमें बेताजा सर्दी है। इसके होते हुए अमरीका में 20 डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटर जो हैं उन्होंने यूएस में अर्ज किया है बाइडन साहब को कि भई ये जो आप ऑफेंसिव वेपन्स कॉन्स्टेंटली इसराइली की और उसकी गवर्नमेंट को दे रहे हो इसके ऊपर रोक लगाओ, और उसको बोलो जी के एड गाजा में जाने दे और इसको यूज ना करें सिविलियंस के खिलाफ। उन्होंने एक लेटर लिखा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब को जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि अमरीका को अपने खुद के लॉज जो हैं उनको तो अपहोल्ड करना चाहिए, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि मिलिट्री एड उन कंट्रीज को बिल्कुल नहीं हम देते हैं जो कि वॉर क्राइम्स कमिट करते हैं और ब्लॉक करते हैं ह्यूमैनिटेरियन एड को। यूनाइटेड नेशंस के जो एक्सपर्ट्स हैं और राइट ग्रुप्स हैं वो बिल्कुल अब एक्यूज कर रहे हैं कि इसराइल जो है वो जीनोसाइड कर रहा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसने तो लास्ट मंथ इशू किए थे अरेस्ट वारंट्स फॉर नेतन्याहू, आपको पता ही है कि ये पिटीशन जो थी साउथ अफ्रीका लेकर आए थे, ना सिर्फ नेतन्याहू बल्कि जो उनके फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट हैं उनके खिलाफ भी, कि उनको कहा था कि ये वॉर क्रिमिनल्स हैं जो कुछ ये कर रहे हैं गाजा में। लेकिन जनाब यूएस की जो सपोर्ट है वो दबादब चल रही है इसराइल के लिए। एक रीसेंट स्टडी आई है ब्राउन यूनिवर्सिटी की और उसके मुताबिक बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने, यानी तुम खुदा दा खौफ जरा देखो कि यूक्रेन को तो दबादब पैसे दे ही रहे हैं, 17.9 बिलियन US डॉलर का अभी तक जो है उन्होंने जो उनका जो फर्स्ट ईयर ऑफ गाजा के साथ वॉर थी उसमें इसराइल को ये फंड दे चुके हैं जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है। तो जाहिर है जनाब उनको दबादब पैसा मिल रहा है और असला भी मिल रहा है, तो वो क्यों रुकेंगे, उनके तो सारा मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि इसराइल जो है वो चाहता है कि पूरे का पूरा एक ग्रेटर इसराइल बनाए, जिसके के अंदर जो है वो पार्ट ऑफ इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है, तो पैलेस्टाइन को तो पूरे को वो खत्म ही कर देना चाहते हैं। तो इस पूरे इलाके को जो है वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, ये उनकी ड्रीम है। और अगर आपको याद हो हेनरी किसिंजर साहब, उनका भी जो था ड्रीम था कि मिडिल ईस्ट का हमने नक्शा चेंज करना है, तो वो नक्शा चेंज का जो चक्कर है उसके अंदर जो है इसराइल के साथ ये खड़े हुए हैं। लेकिन जाहिर है कि बात भी है, क्योंकि इसराइली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ा पैसा देती हैं अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन में, जब जो है वो इनके कैंपेन्स वैम्पेन्स चलते हैं, इलेक्शन होते हैं उसके अंदर, तो अब जाहिर है उनको भाई लोग को कैसे अब अंकल सैम नाराज करेंगे, है ना जी। तो ये तो भाई लोग हैं इनके, इसराइल जो है। बांग्लादेश जो है जी, उसने आज ऑर्डर दिया है एक कमीशन बिठाया जाए जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा फेल्ड 2009 पैरामिलिट्री म्यूटनी और क्रैक डाउन अगेंस्ट द रोल ऑफ अलेज्ड फॉरेन बैकर्स, और जो है जिन्होंने जिसकी की वजह से बहुत सारे लोगों की यहां पर डेथ हुई थी। जाहिर म्यूटनी थी तो बहुत सारी लड़ी थी। आज जो इंक्वायरी चीफ है जिनको कि ये कहा गया कि कमीशन चलाओ, उन्होंने आज ये कहा है। उन्होंने कहा जी कि ये जो लोग थे इन्होंने थाउजेंड ऑफ वेपन्स जो थे चोरी किए थे बंगला राइफल्स पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर से बिफोर स्टार्टिंग किलिंग स्प्री इन बैरिक्स इन फरवरी 2019। थाउजेंड ऑफ सोल्जर्स जो थे उन्होंने फिर ये आर्म्स जो है बड़ी मुश्किलों से इनसे छीने थे और इन म्यूटिनियर्स से, और आर्मी ने फिर इसको क्रश किया था जिसके के अंदर 74 लोगों की डेथ हुई थी और 57 मिलिट्री के ऑफिशियल्स जो है वो भी मारे गए थे। हंड्रेड ऑफ सोल्जर्स जो है फिर उनको पनिश किया गया था बाय स्पेशल मिलिट्री कोर्ट, जिसमें कि उनको या तो डेथ सेंटेंस दी गई थी या सेवरल ईयर्स ऑफ प्रिजन दिया गया था। यूनाइटेड नेशंस ने इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा एतराज किया था और उन्होंने कहा था कि आपका यह प्रोसेस जो है बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ लॉ जो है या ड्यू प्रोसेस को भी फॉलो नहीं करता है। ऑफिशियल्स जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनके बारे में उन्होंने बताया कि जी ये जो सोल्जर्स थे इनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था और इनकी पे बड़े अरसे से नहीं बढ़ाई जा रही थी और इनको बेटर ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था, तो इसलिए ये म्यूटनी जो थी ये आई थी यहां पे और फिर 2009 में, तो उसमें फिर जो है ये बड़ा नुकसान हुआ। बहरहाल जी अब कमीशन बिठाया गया है जो अब इस सारी चीज को जो है वो करेगा, प्रोब करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय विलेज टेस्ट, और टेरियो का लार्जेस्ट हलाल पाकिस्तानी बफे है, और ये दो रेस्टोरेंट्स हैं जनाब इनके, एक मिसेस सागा में और एक ओकविल में। तो अगर आप आज वीकेंड है, अगर आपको जाना है खाने का एंजॉय का मजा लेना, तो आप जा सकते हैं। मिसेस सागा का नंबर है 9052323663 और ओकविल का जो नंबर है वो है 9052262294। और अदनान अलवी साहब लाइफ टाइम ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, बहुत जबरदस्त इनके पास जो है वो सर्विसेज हैं। अगर आपको आरईएसपी आरआरएसपी किसी किस्म का भी कोई इंश्योरेंस चाहिए तो आप अदनान अलवी के पास जाइए। अदनान अलवी का नंबर है 4163010249। अगर आपको पैसे बिल्कुल पीस ऑफ माइंड से अपने प्यारों को भेजने हैं तो आप भेज सकते हैं, और आप ये रेफरल कोड EZ10 जो है ये यूज कर लें। और जनाब पायल ज्वेलर्स असलम भाई होते हैं, अगर आपको किसी किस्म का भी कोई ज्वेलरी चाहिए, कोई आपका फैमिली में इवेंट आ रहा है, असलम भाई को कॉल करें, इनका नंबर है 9057907879। डेंटिस्ट्री ऑन रिजवे, डॉक्टर नाजिया होती हैं, कोई भी डेंटल सर्विसेज आपको चाहिए उनके पास जाएं, उनका नंबर है 9058200900। ठीक है जी, और इसके अलावा अच्छे कपड़े चाहिए तो फिर आप जाएं प्लीज स्पेयर एंड मके पे, और ये अपनी नई लोकेशन पे आ गए हैं 775 ब्रिटानिया रोड वेस्ट यूनिट्स 7B मिसेस सागा में, इनका नंबर है 9056703388। ठीक है जी। अच्छा जनाब, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ साहब है, क्योंकि बहुत ज्यादा अब दुनिया सारी में इनके ऊपर अब लानतान हो रही है कि भाई क्यों पाकिस्तान ने जाके सर्जिकल स्ट्राइक्स दूसरी दफा इस साल में की है अफगानिस्तान के ऊपर, एक ऐसा कंट्री जिनके पास ना तो कोई मिलिट्री है ना कोई एयरफोर्स है, और अफगानिस्तान के साथ आप क्यों लड़ाइयां कर रहे हो भाई। अफगानिस्तान को तो आपने साल हर साल अफगानियों को आपने पाला है, अफगानिस्तान के साथ तो आपकी बड़ी दोस्ती होनी चाहिए थी। दे हैव स्टार्टेड लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया, यू नो, आपकी गलत पॉलिसीज की वजह से बार बार आपका जो एयरफोर्स है उधर जाके जो है वो अटैक्स कर रहा है। क्या है, काय को कर रहा है भाई, काय को कर रहा है? आप उनके साथ बातचीत ही करो, आप उन्हीं को बोलो, आप उनको अगर आपके पास कोई रिपोर्ट है, कोई आपके पास इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस आप उनकी पुलिस को और उनकी अथॉरिटीज को दो, भाई ये यहां पर आपके बैठे हुए हैं ये टेररिस्ट, उनको मारो। आप जाके क्यों मार रहे हो एक दूसरे कंट्री में? फिर आपका अगर इंडिया आपके मुल्क में आता तो आप कहते जी हमारा सॉवरेनिटी खराब कर रहा है। अभी आप अफगानिस्तान का सॉवरेनिटी नहीं खराब कर रहे हो, आप भी तो कर रहे हो ना जब ऐसे कर रहे हो। बहरहाल एनीवेज, काफी इसके ऊपर दुनिया में लानतान हुई जब इस अभी रिसेंटली जो है पाकिस्तान मिलिट्री ने ऑर्डर दिया एयरफोर्स जाके जो है वहां पर अटैक्स करे, जिसमें कि उन्होंने कहा जी हमने मिलिटेंट्स को मारा, और अफगानियों ने कहा कि नहीं वहां पर सिविलियन से उनको मारा। इसके ऊपर आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी हमारा भाई है अफगानिस्तान फिर से, और हम उनके साथ बड़े अच्छे तालुकात चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वहां पे चीजें इंप्रूव करें, वहां पे इकोनॉमी और ट्रेड इंप्रूव करें, लेकिन जो टीडीपी के ठिकाने हैं वहां पे उसको अफगानिस्तान को खत्म करना पड़ेगा। हमने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बड़ी दफा कहा है कि टीडीपी को रोको और ये हमारी रेड लाइन है, हमारे बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है कि हमारे यहां के सिविलियंस को ये लोग मारते हैं, आपका सॉइल यूज करते हैं, तो ये इनको खत्म करना चाहिए। अलबत्ता हम जो है डायलॉग्स आपके साथ करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा जी कि अभी रिसेंटली भी क्या हुआ है कि 16 FC के जो पर्सनल थे टीटीपी वालों ने आके उनको मारा है, और जब फोर्सेस ने इनको एलिमिनेट करने की कोशिश की नॉर्थ वजीरिस्तान में टेररिस्टों को, तो इन्होंने फिर भी मिलिट्री के ऊपर जो है वो खोली जो है फायर खोली और उसके अंदर फिर से एक मेजर की डेथ हुई। तो उन्होंने कहा जी या नेक्स्ट सेट, ठीक है बातचीत करो भाई, उनको रोको, उनको मना करो, आपका इंटेलिजेंस भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना कि आपको पता भी होना चाहिए कि भाई टेररिस्टों की क्या मूवमेंट है, किधर हो रही है। जब हो जाता है टेररिस्ट अटैक फिर आप कहते हो करार वाकई सजा देंगे, मतलब इन जुमलों का क्या फायदा है। अभी दीबू सरजारी जो है आज वो गड़ी खुदा बख्श में जो है वो बात कर रहे थे, और आज उन्होंने बहुत ही संगीन इल्जाम जो है वो इमरान खान के ऊपर लगाए हैं, और उन्होंने कहा है जी कि इस चीज का कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप जो है फॉरेन इंटरफेरेंस चाहते हैं, और असल में ये जो यूएस का सारा स्टेटमेंट आ रहा है अभी ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खराब करना चाहता है। वाह वाह वाह, क्या बात है भाईजान आपकी, क्या बात है। यानी कोई अगर जो है कल आपके नाना जी आपकी मां के लिए कोई बोलेगा तो आप कहेंगे कि ये फॉरेन इंटरफेरेंस है भाईजान, व्हाट इज दिस। तो वो कहते हैं जी ये न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान का खराब करना चाहते हैं, और ये कॉन्स्पिरेसी है पाकिस्तान के खिलाफ, ये जो इमरान खान के लिए वॉइसेस उठ रही हैं ये सारी असल में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं ये, और हम जो है अपने डिफेंस को किसी तरह जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं आने देंगे, उससे पीछे रखेंगे, और हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे अगर कोई भी नजर डालेगा तो हम उसकी जो है वो नजर को खराब नजर को हटाएंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम ZA भुट्टो ने और मेरी मां ने बेनजीर ने चलाया था। माशाल्लाह क्या बात है, क्या बड़ी हिस्ट्री अच्छी पड़ी हुई आपने, तो जो है वो है। और फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो सारी इनकी स्टेटमेंट्स हैं ये इंटरफेरेंस है हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर, हमारी डेमोक्रेसी जो है वो अमेरिका के जो यूएस के जो लॉ मेकर्स हैं उसकी बातों के ऊपर नहीं चलती है। तो इमरान खान को सामने आके जो है अपनी पोजीशन क्लेरिफाई करनी चाहिए और बताना चाहिए कि वो ये स्टेटमेंट्स जो है अमेरिकन लॉ मेकर्स क्यों दे रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। यानी अब आप अपने मुल्क में तो लोगों के ऊपर आपने बोलने पर पाबंदी रखी है, लेकिन अब जो यूएस लॉ मेकर्स हैं उनके बोलने पर भी आप पाबंदी लगाओगे। वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या जबरदस्त स्टेट्समैन है आप बीबी जरदारी साहब। बड़े खुशी हुई आज मुझे आपकी ये बातें सुन के। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल किसी किस्म का डील नहीं करेंगे न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर। उन्होंने कहा जी पीएमएलएन की जो गवर्नमेंट है उसके पास मैंडेट ही नहीं है कि वो यूनिलैटरल डिसीजंस ले सकती है, उसको हमसे पूछना पड़ेगा। तो भाईजान मैं आपको जरा याद करा दूं जो है बीबी जरदारी साहब, आपको शायद याद नहीं है कि आपकी वालदा बेनजीर भुट्टो पे एक किताब लिखी थी स्टीवन आर वीजमन ने, और स्टीवन आर वीजमन ने बड़ा क्लियरली अपनी किताब में लिखा है कि मेरे वालिद साहब जो थे वो भी केओस जिस वक्त लाए थे ना मुल्क में, तो तब वो जीत गए थे, तो मैं भी चाहती हूं कि केओस इस मुल्क में आ जाए ताकि मैं ये पढ़े जरा इसकी स्टीवन वीजमन की बुक जो है ये आप पढ़ें, जिसमें कि वो सारा वक्त आपकी वालदा से जो है बेनजीर भुट्टो साहिबा से बात करके उसने ये किताब लिखी है। तो आप लोग जो हैं जरा अपने वालिद साहब से जरा पूछें सबसे तो पहले कि वो जो आपके कह रहे हैं ना कि ये पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस, अपने वालिद साहब से जरा जरदारी साहब से जाके पूछो वो कैसे अलाउ करते थे अमेरिकन ड्रोन हमले पाकिस्तान के ऊपर, ये पाकिस्तान के सॉवरेनिटी को खराब नहीं करती थी चीज, तो जरा अपने गिरेबान में झांक के देखो फिर दूसरों के ऊपर आप एतराज करना। ठीक है जी, ऐसे है। अच्छा जनाब, पाकिस्तानी जो है उन्होंने आज 17th डेथ एनिवर्सरी जो है बेनजीर भुट्टो साहिबा की मनाई बड़े डेडिकेशन के साथ, और आज एक गैदरिंग हुई थी गड़ी खुदा बख्श में, इनका जो एंसेस्ट्रल विलेज है और वहां पे भुट्टो फैमिली के बाकी लोग भी जो हैं, नहीं गड़ी खुदाबख्श जो है वो नहीं है, लड़काना इनका विलेज है, गड़ी खुदाबख्श इनकी कब्रिस्तान है जहां पे के भुट्टो फैमिली के दूसरे लोग भी हैं। तो बीबी जरदारी, आसिफ जरदारी और आसिफा जो जरदारी हैं वो भी वहां पे थे। इसके अलावा एमपीए फरियाल तारपुल जो कि जरदारी साहब की बहन है, सिंध चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह, ये सारे लोग जो थे प्रेसिडेंशियल हाउस नोडेरो में जो है वहां पे पहुंचे। इसके अलावा केपी के गवर्नर फैसल खान, करीम कुंडी जो हैं वो भी यहां पे पहुंचे। तो यहां पे जो है एक 60 फीट वाइड मेन स्टेज जो था उसको पार्टी के फ्लैग से डेकोरेट किया गया था, और सारे के ऊपर पोर्ट्रेट्स लगाए गए थे बेनजीर साहबा के और बाकी के पार्टी लीडर्स के भी। बिलावल जो है उन्होंने अपनी मां को बहुत रिच ट्रिब्यूट्स दिए, उन्होंने कहा जी मेरी मां ने 30 ईयर लॉन्ग पोलिटिकल स्ट्रगल की, विच विल बी पार्ट ऑफ द पोलिटिकल स्ट्रगल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। सीसीटीवी कैमराज लगाए हुए थे बेशुमार यहां पे लड़काना की पुलिस ने। इसके अलावा 8,500 पुलिस ऑफिशियल्स, एसएसयू और यानी कि स्पेशल सर्विसेज यूनिट्स, लेडी पुलिस, ट्रैफिक पर्सनल, कमांडोज जो थे यहां पे डिप्यूट किए गए थे ताकि सिक्योरिटी रहे। इसके साथ साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी इनको आज रिच ट्रिब्यूट्स दिए और उन्होंने कहा कि शी रिमेन्स आइकॉन ऑफ करेज एंड रिजिलियंस इन पाकिस्तान हिस्ट्री। तो ये आज जी सारा जो है ये मनाया गया। आईएसपीआर के जो डीजी हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब, उन्होंने आज कहा है कि किसी इंडिविजुअल को कोई पॉलिटिक्स हम नहीं करने देंगे अगर वो पावर में गलत तरीके से पाकिस्तान में आना चाहता है। आज वो जो है वो क्वेश्चंस के जवाब दे रहे थे जो जर्नलिस्ट उनसे पूछ रहे थे, और उन्होंने जर्नलिस्टों ने पूछा कि क्या आपका बैक डोर टॉक्स पीटीआई के साथ हो रहा है, तो उन्होंने कहा जी कि नहीं। और जो है ये क्योंकि उन्होंने जर्नलिस्टों ने कहा कि हमें पता चला है कि कोई एक अफसर है खास जो कि आप दोनों के बीच में बात करा रहा है, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान मिलिट्री के किसी गवर्नमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, हम जो है प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, हर गवर्नमेंट के साथ हमारा ताल्लुक किसी एक स्कूल ऑफ थॉट या पार्टी से बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप जब ये चीजों को मिक्स करते हैं तो आप खराब करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो एक नेशनल फोर्स है। और उन्होंने कहा जी कि जो भी पार्टी इस वक्त सेंटर में या प्रोविंसेस में है वो मेजॉरिटी सपोर्ट लेकर आई है। आर यू सीरियस सर? अच्छा जी, बरहाल वो कहते हैं जी उनको मिला है मेजॉरिटी मिला इसीलिए वो हुकूमत में है। और वो कहते हैं जी कि अब चूंकि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका प्रेरोगेटिव होती है कि वो किसके साथ बैठे और किसके साथ ना बैठे और अपने मसले जो है सॉल्व करें। अलबत्ता हमें खुशी है कि ये लोग अब बैठ के आपस में बात कर रहे हैं ताकि, और इन्होंने वायलेंस का रास्ता अब नहीं लिया। रेज हमीद के कोर्ट मार्शल के ऊपर इन्होंने कहा जी कि मिलिट्री का जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है वो बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव है और वो एविडेंस के ऊपर काम करता है, एलिगेशन के ऊपर काम नहीं करता है, तो हमारे पास उनके खिलाफ काफी एविडेंस है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने जनाब आज कराची के अंदर हैवक क्रिएट किया। उन्होंने आज ये जो सिचुएशन चल रही है पारा चिनार और केपी के कुरम डिस्ट्रिक्ट में, उस पे आज इन्होंने सिट इन दिया। उसकी वजह से बेतहाशा जो ट्रैफिक थी वो डिस्टरप्टेड रही चाइना के अंदर, बहुत सारा जो है रश रहा मॉर्निंग में, लोगों को ऑफिस और कामों में पहुंचने में बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किलें हुई। जो क्लैशेस हुए हैं पारा चिनार में उसमें अभी तक 130 लाइव्स जो हैं वो जा चुकी हैं और 100 बच्चे जो हैं क्योंकि शॉर्टेज नहीं था मेडिसिन का तो उसमें डेथ हुई है अलेजली। अलबत्ता केपी की जो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है बैरिस्टर अली सेफ, उन्होंने कहा ये झूठ है, हम जो है हेलीकॉप्टर के थ्रू जो है बेसिक नेसेसिटीज की चीजें और मेडिसिन कॉन्स्टेंटली पहुंचा रहे हैं। आज कराची में एमए जिना रोड एट नुमाइश चौरंगी जो थी वो क्लोज थी, मोटरिस्ट जो है उनको डाइवर्ट किया गया सेक्रेटेरिएट चौरंगी की तरफ। इसके अलावा गुरु मंदिर टू जो सोल्जर बाजार है वो भी अबुल अल हसन इस्फहानी रोड जो है टू सुपर हाईवे अब्बास टाउन वो भी ब्लॉक थी, ट्रैफिक को रीराउट किया फ्रॉम पैराडाइज बेकरी टू फरिया चौक। फाइव स्टार चुरंगी जो है वो भी क्लोज थी, ट्रैफिक जो है उसको मूव किया गया सर्विस रोड पे। शाराए फैसल जो थी फ्रॉम स्टार गेट टू मलीर वो भी बंद थी, ट्रैफिक को जो है वो डाइवर्ट किया गया दरगाह रोड के ऊपर टू राशिद बिनहास रोड। इसी तरह हाईवे जो मलीर और 15 ब्रिज जो थी उसको भी और कायदाबाद को ब्लॉक किया गया था, ट्रैफिक को फिर उन्होंने डाइवर्ट किया मलीर हॉल टू मॉडल कॉलोनी और रीराउट किया मंजिल पंप टू यूनस चौरंगी एंड दाऊद चौरंगी टू इंडस्ट्रियल एरिया। तो काफी आज लोगों को जो है परेशानी रही लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने जरा लगता है अच्छा काम किया। फेडरल कैबिनेट जो है जी उसने फिर अब फाइनली जो अमेंडमेंट्स किए गए थे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट, जो मदरसा बिल था 2024 का, इसको और इन्होंने जिसको के JUIF जो जमात इस्लामी जो है फजलुर रहमान ग्रुप वो इसको लाना चाहते थे, इससे पहले जमात इस्लामी जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के जो सेनेटर हैं कामरान मुर्तजा, उन्होंने एक टीवी शो में कहा था कि गवर्नमेंट के और पार्टी के बीच में जो मसले हैं वो हल हो गए और एक नोटिफिकेशन जल्दी ही इन लाइट ऑफ 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2 दिन में आ जाएगा। आज उन्होंने कहा जी कि उनकी और लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारर की ने जो मुलाकात हुई थी उसमें ड्राफ्ट को फाइनलाइज किया गया। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें मौलाना फजल रहमान साहब से हुई थी और उन्होंने कहा था कि ये उन्होंने एक्सेप्ट की हैं डिमांड्स ऑफ इत्तेहाद तंजीम मदारे से दीनिया और उन्होंने अब कहा है जी कि ये वैसे तो ऑलरेडी दोनों पार्लियामेंट के हाउस ने इस बिल को पास कर दिया है, लेकिन ये जाहिर है कि इसके ऊपर जरदारी साहब के इतराज थे कि ये अगर बड़ा ही कंटेंशियस अगर लॉ पास किया गया तो FATF की हम फिर से लिस्ट में आ सकते हैं। पता नहीं क्या अमेंडमेंट्स किए हैं इसमें, कुछ पता नहीं है, पता चलेगा तो हम आपको बताएंगे। अच्छा जनाब, कल हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह का देहांत, यानी कि उनकी डेथ हुई थी, लेकिन आज उसके ऊपर भी पॉलिटिकल रो जो है वो चल पड़ी है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं उनको दिल्ली के निगम बोध घाट जो है वहां पे इनकी लास्ट राइट्स जो हैं वो की गई। इसके ऊपर जो है कांग्रेस बड़ी जो है नाराज थी। कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लेटर लिखा था मोदी जी को और होम मिनिस्टर अमित शाह को, और उन्होंने कहा था जी ये एक ऐसी जगह पे इनके लास्ट राइट्स होने चाहिए जिसमें कि जिसकी जगह को फिर मेमोरियल बनाया जा सके और वो जो है वो एक सैक्रोसेंट वेन्यू जो है वो बन जाएगा फॉर दिस ग्रेट सन ऑफ इंडिया एज इज द ट्रेडिशन ऑफ इंडिया फॉर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। खड़गे साहब का ये जो लेटर था ये जैसे ही उन्होंने बताया तो उससे पहले ही जो होम मिनिस्ट्री थी वो लिख चुकी थी डिफेंस मिनिस्ट्री को कि इनके जो लास्ट राइट्स हैं वो निगम बोध घाट के ऊपर जो हैं वो होंगे। कांग्रेस ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और उससे पहले कांग्रेस ने कहा था कि इनको जो है 8 PM जो है कांग्रेस के जो हेडक्वार्टर्स है उनमें इनके मॉर्टल रिमेन्स जो हैं वो लाए जाएंगे और फिर इनकी जो क्रीमेशन सेरेमनी है 9:30 बजे पार्टी वर्कर्स के होमेज के साथ होगी। यूनियन मिनिस्टर जो है उसने कुछ भी इस पर जवाब नहीं दिया बल्कि ये ऑर्डर्स पास किए। इसके ऊपर अब ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि जो श्रोमणी अकाली दल के लीडर सुखबीर बादल हैं वो भी बड़े भड़क गए। उन्होंने एक्स के ऊपर कहा जी कि ये बिल्कुल शॉकिंग और अनबिलीवेबल और कंडेमेबल है जिस तरह से यूनियन गवर्नमेंट ने जो है इनकी रिक्वेस्ट रद्द की है कांग्रेस की। वो इंतहाई डिस्टिंग्विश्ड लीडर थे मनमोहन सिंह और उनको वाकई उस जगह के ऊपर उनके लास्ट राइट्स होने चाहिए थे जहां पे कि एक मेमोरियल बिल्ड किया जा सकता फॉर हिज अनपैरेलल्ड सर्विसेज टू द नेशन। और ये जो है सारे का सारा काम राजघाट में होना चाहिए था जैसे कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के साथ होता है एज अ ट्रेडिशन। हिंदुस्तान के अंदर जिम ट्रेनर जो हैं जी एक आगरा में उन्होंने पोज किया कि वो रॉ के एजेंट थे और उन्होंने फिर सेक्सुअली एक्सप्लॉयट किया एक औरत को जो इंडियन और कनेडियन औरत को जो कि इंडियन ओरिजिन की थी। बहरहाल इसके खिलाफ जी वो लिख लिया गया है एक FIR। ये जो साहिल शर्मा साहब हैं इनकी दोस्ती इनके साथ हुई थी टिंडर के ऊपर एक आगरा के होटल में, फिर इन्होंने इसके कोई जो ड्रिंक है उसमें कुछ मिला के दिया और फिर जब ये शी फेल अनकॉन्शियस तो इसको अपने दोस्त के साथ सेक्सुअली हरेस किया असॉल्ट किया। इसके साथ साथ जनाब राजगुरु नगर के अंदर भी एक 54 ईयर के आदमी ने दो छोटी बच्चियां बहनें जो 8 और 9 साल की थी उनको जो है वो सेक्सुअली अब्यूज किया और इनकी बॉडीज मरी हुई जो थी वो एक नाले के पास पाई गई। जब बच्चियों को घर पे नहीं वो मिले तो उन्होंने पुलिस को जब शिकायत की तो पता चला जी कि इस आदमी ने उन बच्चियों को घर में अकेला देख के ये किया था। इसको आइडेंटिफाई किया गया है अजय कुमार दास ऑफ वेस्ट बंगाल और फिर उसने जब बच्चियों ने रेजिस्टेंस की तो उनको उनका गला घोट के उनको मार दिया। इसके साथ साथ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने फाइंड आउट किया है कि क्राइम्स जो आर नगर के बीजेपी के MLA मुन्नी रथना ने जो किए हैं उनके खिलाफ जो है चार्जशीट अब डाली गई है रेप और हनी ट्रैप की। उनके फोन से भी बहुत सारी तस्वीरें लड़कियों की मिली हैं जिसके बारे में उन्होंने कहा जी कि ये जो है इनको मैं हनी ट्रैप करता था और उनको इन्फेक्ट करता था एड्स के साथ। ये चार्जशीट जो है 2481 पेजेस की है और इसके अंदर 146 विटनेसेस जो हैं उनसे बात की गई है और 850 डॉक्यूमेंट्स ऑफ एविडेंस जो हैं वो डाले गए हैं जिसके के ऊपर इनको पकड़ा गया था। कैटरीना कैफ साहबा जो हैं जी उन्होंने आज इंस्टाग्राम पे सल्लू भाई को उनकी 59th बर्थडे पे बहुत बधाइयां दी हैं। बाकी की पूरी इंडस्ट्री ने भी दी है। उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक मोनोक्रोमेटिक पिक्चर डाली है और उन्होंने कहा हैप्पीएस्ट बर्थडे बीइंग सलमान खान और मे ऑल द वंडरफुल थिंग्स ऑफ लाइफ बी विद यू दिस ईयर। इनकी काफी लंबी जो है दोस्ती रही सलमान के साथ। ये भी रूमर था कि ये इनको डेट कर रही थी, फिर जब इनके बीच में खटपट हो गई तो कैटरीना ने फिर मैरी किया विकी कौशल को 2021 में। लेकिन कल हमने आपको बताया था कि सलमान जो है आज अपनी फिल्म का टीजर सिकंदर का टीजर जो है वो लेकर आएंगे अपनी बर्थडे पे, लेकिन आज उन्होंने कहा कि मैं अपनी फिल्म का टीजर नहीं ला रहा हूं, मैं इसको पोस्टपोन कर रहा हूं 28 December के टू ऑनर द डेथ ऑफ मनमोहन सिंह। और फैंस ने जाहिर है कहा कि सल्लू भाई है। मीका सिंह जो है उन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया है जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि आपकी बड़ी दोस्ती है सल्लू भाई की के साथ तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कभी कभी आप अपने सॉन्ग के लिरिक्स भी चेंज करते हैं जैसे कि हमने सुना है कि जो लूट मूवी आई थी उसके लिए भी उन्होंने कहा हां जी बिल्कुल, मैं जो वो फिल्म के जो कैरेक्टर्स थे उसको देखते हुए सारे जो थे कैरेक्टर्स के नाम डाले थे और मैंने कैटरीना भी डाला था लेकिन सल्लू भाई ने कहा कि नहीं कैटरीना को चेंज करो तो फिर मैंने कैटरीना को चेंज करके जैकलीना जो था वो डाल दिया था। और वो कहते हैं जी मेरा उनके साथ बड़ा प्यार है, बल्कि अभी जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जब इनको सल्लू भाई को बड़े थ्रेट्स दिए थे तो उसने कहा था आई एम योर ब्रो आई एम देयर डोंट स्ट्रेस विल हैंडल एवरीबडी। तो ऐसे है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 तो जनाब जो है भाग नहीं रही, बल्कि जो है वो प्लेन का सफर जो है वो कर रही है, बिल्कुल जहाज के ऊपर 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 जा रही है जी। जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उसका डे 22 का है, आपको पता है कितना इस फिल्म ने कमा लिया है? 1719 करोड़, यानी कि 1700 करोड़ से ज्यादा इस फिल्म ने जो है वो कमा लिए हैं। एंड इट इज इंचिंग क्लोजर टू बाहुबली 2 का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ने के पास जा रही है, 1788 करोड़ का, यानी कि 1788 करोड़ का जो वर्ल्ड वाइड बाहुबली 2 ने किया था। और इसने जो है 6 दिन के अंदर ही जो है 100 करोड़ कमा लिए थे, और अब जो है ये बाहुबली का भी रिकॉर्ड लग रहा है तोड़ेगी। पाकिस्तान जो है उसमें उसने कहा है कि जी हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो हो रही है उसके बीच में वीजा रिस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स करेंगे। आज इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ताउला तारण ने एक जो कंक्लूडिंग सेरेमनी हो रही थी चैंपियंस T20 कप की उसके अंदर बात किया, और उन्होंने कहा जी कि ये जो इवेंट शुरू हो रहा है February 19, 2025 का कराची में, उसमें पीसीबी ने बड़ी जबरदस्त तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हैं, और इंडिया जो है वो उसने आने से इनकार किया, लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से बाहर रखना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा जी ज्यादातर मैचेस पाकिस्तान में होंगे, और ये चीज जो है पाकिस्तान का कल्चर और टूरिज्म को जो है वो प्रमोट करेगी। इसके अलावा जितनी फॉरेन टीम्स आएंगी वो फिर हम पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी और वार्म रिसेप्शन जो है वो देखेंगी, एंड वी विल एंश्योर कि उनको जो है बहुत अच्छा रिसेप्शन मिले, और उसके साथ वीजा पॉलिसी भी हम रिलैक्स करेंगे ताकि क्रिकेट फैन जो है दुनिया से आके यहां पर मैचेस देख सकें। और जनाब हो रहा है कराची में मैराथन, बड़ा जबरदस्त, कराची जो है बड़ा लाइमलाइट में आ गया माशाल्लाह, और January 5, 2025 को यहां पे एक इंटरनेशनल मैराथन फिर से हो रही है। यहां पे ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से जो लोग होते हैं, बच्चे बूढ़े यंग सब आके इसके अंदर करते हैं, और उसकी बड़ी भरपूर तरीके से तैयारियां जो चल रही हैं। बहुत सारे ग्रुप्स को आप कराची में देख सकेंगे, वे बहुत ज्यादा जो है वो तैयारियां कर रहे हैं, बहुत सारे वेटरन मैराथनर्स जो हैं वो भी, और दूसरे लोग भी जो है इसके अंदर अब ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा ले रहे हैं। और जनाब ये इंशाल्लाह फिर एक हाई लेवल का इवेंट कराची में होगा। एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज, हम आपको पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो मैच चल रहा है उसकी टेस्ट की खबर नहीं सुना रहे, क्योंकि वो टेस्ट जो है सैटरडे को खत्म होएगा, सैटरडे 5 दिन में ना सैटरडे में खत्म होएगा, तो उसकी फिर हम आपको खबर जो है मंडे को सुना सकेंगे। इस वक्त हम आप बताते हैं आपको कि जिम्बाब्वे ने क्या तीर मारा है, वाह वाह वाह, जिम्बाब्वे ने जनाब अपना हाईएस्ट टोटल जो है टेस्ट मैचेस के अंदर लिया है। जो फर्स्ट टेस्ट उसका अफगानिस्तान के साथ चल रहा है एट क्वीन स्पोर्ट्स क्लब एंड बुलेयो, 586 रन उन्होंने बनाए हैं 135.2 ओवर्स में। शॉन विलियम्स ने 154 ऑफ 174 बॉल्स बनाए हैं। एएम गजफर जो है अफगानिस्तान के, उसने 3 विकेट्स ली फॉर 127। क्रेग इरविन जो है उसने 104 ऑफ 176 बॉल्स बनाए। ब्रायन बेनेट ने अनबीटन 110 ऑफ 124 बॉल्स बनाए। बेन